अक्टूबर में मेरे भक्तजन भाइयों बहनों, आज प्रथम अक्टूबर 2020 का दिन आपके लिए शुभ हो, मंगल में हो। आप सब भगवान की ओर अग्रसर होते हैं, जो हमारे जीवन का असली उद्देश्य है, हमारे जीवन का मुकाम है, ये मोक लाइफ है। आज मैं गीता के 18वें अध्याय के 56वें श्लोक का वर्णन करूंगी। सर्व कर्मण्यपि सदा कुर्वाणो मदप आश्रया मत प्रसादात दपानोति शाश्वतम पदम अद्वयम्। मेरा आश्रय लेने वाला भक्त सदा सत्कर्म करता है, मेरी कृपा से शाश्वतम नाशी पद को प्राप्त करता है। कितनी अच्छी बात बताई है ना आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए, मेरे लिए तो सबसे अच्छी है। क्या क्या? मेरा आश्रय लेने वाला भक्त सदा सब कर्म करता हुआ, देखो है वो भक्त, वो शास्त्र से भगवान का आश्रय लिया है और वो सदा सदा मतलब आज सदा सब प्रकार के कर्म करता हुआ भी मेरी कृपा से अविनाशी पद को, शाश्वत अविनाशी पद को प्राप्त हो जाता है। फिर और क्या चाहिए? फिर क्यों हमें ज्यादा वर्ष करें? हमें केवल भगवान का आश्रय लेना है, उनकी शरण में जाना है। जब हम उनकी शरण में चले जाते हैं तो हमें सदा अच्छे कर्म करने चाहिए और उनकी कृपा से फिर हमको बैठे उठाए ही, कुछ नहीं किए बिना ही शाश्वत पद मिल जाएगा। ज्ञान योगी के लिए तो भगवान ने बताया कि वैसे विषयों का त्याग करके संयम पूर्वक निरंतर ध्यान के परायण है, तब अहंकार ममता काम क्रोध आदि का त्याग करके ब्रह्म प्राप्ति का पात्र होता है। परंतु भक्त के लिए भगवान यहाँ बताते हैं कि बस संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को सदा करते हुए मेरी कृपा से परम पद को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि उसे मेरा आश्रय लिया है। देखो शरणागति कितनी बड़ी थी बात है कि भगवान स्वयं कहते हैं कि ज्ञानी को मैं क्या करूँगा, वो तो अपने आप करता रहता जो करना है उसमें, लेकिन मैं कृपा करता हूँ अपने भक्त पर जो सदा अपने कर्म को करता रहता है और मेरे आश्रय में रहता है। तात्पर्य है कि भक्त को अपना कल्याण खुद नहीं करना पड़ता, कारण कि वे अपने बल बुद्धि योग्यता आदि का किंचित मात्र भी आश्रय न रखे, केवल भगवान का ही आश्रय रखता है। फिर भगवान की कृपा उसका कल्याण कर देती है। कैसा सर्व कर्म समस्या मत कर बुद्धि योग उपासित कर मत चित्ता सत्तम भव, चित्त से संपूर्ण कर्म मुझमें अर्पण करके मेरे पाए हो तथा समता का आश्रय लेकर निरंतर मेरे चित्त वाला हो जा। भगवान कहते हैं कि बस मेरा ही बन जा चित्त से भी मन से भी तन से भी, तो फिर देखो क्या होता है। साधक के लिए दो ही मुख्य कार्य है, संसार के संबंध का त्याग करना, भगवान के साथ संबंध जोड़ना। कल जिसने व्याख्या की थी कि मन को यहाँ से हटा के संसार से हटा कर भगवान में लगाना, बस इतना करना। क्योंकि भगवान के साथ जीव मात्र का स्वतः सिद्ध नित्य संबंध है, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, भगवान के अंश अगर हमारा स्वंध उनसे है, न कि हम माया के अंश है, अगर माया के अंश होते तो हमारा स्वंध माया के साथ होता। श्लोक वाला होगा तो मेरी कृपा से संपूर्ण विघ्नों को टल जाएगा। इतना ही नहीं, इस संसार रूपी क्षेत्र में रहते हुए हमें कई प्रकार के विघ्न आते हैं, बहुत मुश्किल होता है उन दिनों से निकलना, लेकिन भगवान कहते हैं अगर तुम लगता है समझ में लगाता है तो मेरी कृपा से तो संपूर्ण विघ्नों को भी से भी कर जाएगा। यदि तो अहंकार के कारण मेरी बात नहीं सुनेगा तो तेरा पतन हो जाएगा। देखो भगवान कई शाश्वत वाणी बोलते हैं कि जो मनुष्य अहंकारी होता है भगवान की बात नहीं सुनता, अपना मन भगवान में लगाता ही नहीं है, तो फिर उसका पतन हो जाता है। श्लोक 59 यदा अहंकार आश्रित न योत्स्य मन से मिथ्येषु व्यवसायस्ते यत्ति सौम्योक्षति अहंकार का से लेकर तू जरा ऐसा मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। बात तो अर्जुन की है, उस वक्त मैं ना थी ना तू थे, कोई भी नहीं था जब मां भारत का युद्ध हुआ। होंगे किसी रूप में तो अलग बात है। तो इसलिए अहंकार का से लेकर तू भगवान किसको कहते हैं, अर्जुन को, और तुझे हम है, हम के कारण तू कहता मैं नहीं करूंगा, तू कौन होता करने वाला है ना। मेरा ये निश्चय मिथ्या झूठा है क्योंकि तेरी छत्ते पर तुझे युद्ध में लगा देगी। तेरा स्वभाव तो युद्ध का है क्योंकि तेरा जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ है, क्षत्रियों का काम धर्म है लड़ाई करना, फिर तू कैसे युद्ध से हटेगा। लेकिन मिथ्या अहंकार है तुझे, झूठा अहंकार है। वो भगवान कहते हैं कि मेरी कृपा से तो मेरी प्राप्ति भी कर लेगा और सभी विघ्नों से भी छूट जाएगा। परंतु इतना कहने पर भी अर्जुन कुछ नहीं बोले तो भगवान कहते हैं कि यदि तू से मेरी बात ना सुने तो कोई दोष नहीं, पर तू अहंकार से मेरी बात नहीं सुनेगा तो तेरा पतन हो जाएगा। ये दफा तो हम भूल करते हैं ना, भगवान की बात को ख्याल ही नहीं करते। ये दफा हमें अहंकार होता, भगवान कौन होता बोलने वाला, माँ बाप कौन होते हैं बोलने वाले, गुरु कौन होते हैं, मैं तो अपनी मर्जी करूंगा, तो ऐसे मनुष्यों का पतन हो जाता है। भगवान का भाव है कि जैसे भक्त सब काम साधन और सिद्धि मैं कर देता हूँ, ऐसे भक्त को भी चाहिए कि वह सब प्रकार से मेरा ही आश्रय ले। दोनों का सबल कैसा बताया कि भक्त को भी भगवान के आश्रय तो होना ही है, यदि मेरा आश्रय न लेकर वह अहंकार का आश्रय लेगा तो उसका पतन हो जाएगा। कर्तव्य काल में तो एक तो मैं लगाता हूँ, एक प्रकृति लगाती है। भगवान कहते यदि तू मेरी बात नहीं मानेगा तो तुझे अपनी प्रकृति जो स्वभाव जो क्षत्रिय का वो तुझे युद्ध में लगा देगी। युद्ध के बिना तो तू रह ही नहीं सकता, तू युद्ध किए बिना रह नहीं सकेगा, तो सब जिम्मेवारी तेरी होगी मेरी नहीं। जब तू खुद युद्ध करेगा मेरी बात नहीं मानेगा तो तेरा मरना लेना के लिए तू ही जिम्मेवार होगा। अरे मुझ मेरी आशय में मेरी बात सुनकर काम करता है तो मैं तेरे सब सब धर्म प्रत्याज माँ मेकम शरण। श्लोक 60 स्वेन कुंते निविदेशेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् कलेशे सेवशोपि तत्र। ये कुंती नंदन अपने स्वाधन्य काम से बंधा हुआ तू मोह के कारण जिस युद्ध को नहीं करना चाहता उसको भी तू, लेकिन तू करेगा क्यों करेगा, क्यों तू क्षत्रिय कुल में पैदा हो, क्षत्रिय को युद्ध अवश्य करते हैं, लेकिन अभी तुझे क्या हो गया, तुझे मोह हो गया, ये चाचा है ताया है दादा है, मैं इनके साथ कैसे लड़ू क्यों लड़ू। लेकिन अगर तू मेरी आज्ञा नहीं मानेगा तो तेरा अहंकार जाएगा नहीं, और जिससे जो काम तू करेगा उसमें तू बंध जाएगा। जो प्रकृति के परवश नहीं होता, जिसकी प्रकृति महान शुद्ध होती है, ऐसी ज्ञानी ऐसा ज्ञानी महापुरुष भी जब अपने प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है फिर प्रकृति के परवश हुआ तथा शुद्ध प्रकृति वाला मनुष्य प्रकृति के विरुद्ध कर्म कैसे कर सकता है। अगला श्लोक है ईश्वर सर्वभूतानां ये देशे अर्जुना तिष्ठति ब्रह्म सर्वभूतानि यंत्रारूढानि माया। हे अर्जुन ईश्वर संपूर्ण प्राणियों के हृदय में रहता है और अपनी माया से श्री रूपी यंत्र पर रूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को उनके स्वभाव के अनुसार भ्रमण करता है। भगवान तो हम सब के हृदय में रहते हैं और अपनी माया से मायूर शक्ति से हमारे शरीर में आरूढ़ हो जाता है और फिर हम सब को जैसा प्राणियों को जैसा जैसा उसका स्वभाव है वैसे वैसे काम करवाते व्यक्ति भगवान की शक्ति है। जो ईश्वर सबका शासक नियामक पालक एवं संचालक है वह अपनी शक्ति से उन प्राणियों को घुमाता है जिन्होंने शरीर को मैं और मेरा मान रखा है। जैसे कोई रेलगाड़ी पर चढ़ जाता है तो उसे परवशता से रेलगाड़ी के अनुसार ही जाना पड़ता है, ऐसी मनुष्य जब तक शरीर रूपी अंतर के साथ में और मेरेपन का संबंध मानता है तब तक ईश्वर से उसके स्वभाव के अनुसार जन्म मन संसार चक्र में घुमाता रहता है। शरीर के साथ में मेरेपन का संबंध न रहने पर ईश्वर की माया उसे संचालित नहीं करती, फिर वो माया से छूट जाता है, बंधन से छूट जाता है कि भगवान की शरण में जाता है। श्लोक 62 तमे विषण मगच सर्वभागेन भारत तत्प्रसाद परम शांति स्थान प्राप्स्यसि शाश्वतम। ये भरत वंश उद्भव अर्जुन, तू सर्व भाव से उसी ईश्वर की शरण में चला जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाएगा। जीव ईश्वर का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, उत्तरकांड में तुलसीदास जी ने लिखा है। तो गीता में भी हम देखते हैं भगवान कृष्ण 15 अध्याय के 7वें श्लोक में कहते हैं, ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातन। ईश्वर के शरण में जाने से इनकार नहीं रहता, जब तक जीव ईश्वर के वश या शरण में नहीं होता तब तक वो माया के वश में रहता है। सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित ईश्वरी भगवान श्री कृष्ण है, तो भगवान श्री कृष्ण ही सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित ईश्वर है। श्लोक 63 इति इति ज्ञानमुख्यातम गुह्याद गुह्यातरम या विमिषे तद शेषेण यथे शशि तथा कुरु। इस गुह्या से भी गुह्यातर निहंतम शरणागति रूप ज्ञान मैंने तुझे कह दिया, मतलब ये ज्ञान जो भगवान के शरण में हो जाने का ज्ञान जो है ये बड़ा ही गुहतर है, गुहरा मतलब बड़ा ही डीप है, डीप डीप डीपेस्ट है ये सब। तो इस पर आप तो इस पर अच्छी तरह से विचार करके जैसा चाहता है विचार कर, मैंने तो तुझे समझा दिया अच्छे से कि तू मेरी शरण में आ जा, वो ये ज्ञान मैं किसी को देता भी नहीं, ऐसा वो गुहरा था छुपा हुआ ज्ञान दिया है। फिर अगर तू मेरी बात नहीं मानता तो कई मर्जी है, तू जैसा चाहता है वैसा करे। इस कथन में भगवान की विशेष आत्मीयता कृपालता हितैषिता भरी हुई है। हम ऐसे कहते ना अपने बच्चों को, ले भाई मैं तो ये कहता हूँ ले इतने रुपये ले ले, तू मानता नहीं इतने क्या करने तूने है, ये ले ले तो अपनी मर्जी कर जा। ये वचन भगवान अर्जुन को त्याग करने के लिए नहीं कहते, वे तो अपनी तरफ से विशेषता से खींचने के लिए कहते हैं। जैसे गेंद फेंकने से विशेषता से पीछे लेने के लिए मां की त्याग करने के लिए, तात्पर्य है कि कोई भी श्लोक मंत्र यानी मेरा कार्य ईश्वर की शरणागति की बात कहकर अब भगवान अर्जुन को अपनी तरफ सब साकरण की तरफ खींचे, जिससे अर्जुन समग्र की प्राप्ति से वंचित रह जाए। निराकार में साकार नहीं आता पर साकार में निराकार भी आ जाता है। श्लोक 64 सर्व गुह्या तमम भूया शिरो में परम बचा इष्टोसी निर्दिति ततो बक्ष्यामि ते हितम। सबसे अत्यंत गोपनीय सर्वोत्कृष्ट वचन तू फिर मुझसे सुन, तू मेरा अत्यंत प्रिय मित्र है इसलिए विशेष की बात मैं तो देखूंगा। भगवान अर्जुन को कहते तू मेरा परम प्यारा मित्र है, अर्जुन को अकेले को नहीं कह रहे हैं, भरी वो हम सबको कह रहे हैं कि तुम सब जो मेरे अंश है मेरे मित्र भी है, इसलिए मैं तुम्हें अच्छी अच्छी बातें बताता हूँ गुह्या तम जिससे तुम्हारा कल्याण हो जाए। कर्म योग गुह्या है, अंतर्यामी निराकार परमात्मा की शरणागति गुह्या तर है, परमात्मा के प्रभाव की बात गुह्या तम है, तीनों डिग्री आगे ना गुड बेटर बेस्ट गुह्या गुह्या तर गुह्या तम और साकार परमात्मा की शरणागति सब गुह्या तम है। गुड बेटर बेस्ट ऑल द बेस्ट है ये सब गुह्यात्म पद गीता में एक बार यहाँ आया है। निराकार के शरण में जाने से मुक्ति हो जाती है पर साकार के शरण में जाने से मुक्ति के साथ साथ प्रेम की भी प्राप्ति हो जाती है। अब देखिए कहती हूँ की निराकार की जो आराधना करते हैं उनकी मुक्ति हो जाती है, साकार की साधना करने से मुक्ति तो होगी होगी पर भगवत प्रेम भी मिल जाएगा। भगवत प्रेम मिलने से क्या होता है कि ईर्ष्या भरो प्रभु में होने के साथ साथ प्रेम में हो जाता है। वो प्रत्येक प्राणी में अपने प्रभु का स्वरूप देखता है, उतना ही प्रेम करता है लोगों से जितना वो अपने भगवान से करता है। लेकिन ये स्थिति बहुत कम लोगों में होती है या आती है। प्रायः हम भगवान की पूजा करते हैं और वो पूजा करने तक सीमित रह जाती है, वो प्यार भी दिन खत्म हो जाता है, वो भजन गा करके हम नहीं छोड़ देते हैं, लेकिन बाहर जब निकलते हैं तो दूसरों के प्रति हमें कुछ ऐसा ध्यान नहीं रहता है कि भगवान के अंश है, मैं भगवान का अंश हूँ, हम मित्र बात है, हमें मित्र की तरह रहना चाहिए। नहीं, फिर वही राग द्वेष आ जाता है तो हम एक दूसरे से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, उनका दूसरों को छोटा मानते हैं। अब मैं आपको सिंधु में बिंदु नाम की पुस्तक के एक और सब्जेक्ट की ओर ले जाना चाहती हूँ। सिंधु में बिंदु में तीसरा विषय है सेवा धर्म। सेवा क्या? व्हाट इज द सर्विस? श्री राम चरित मानस में सेवा धर्म के विषय में तुलसीदास जी ने युद्ध कांड का दोहा 292 है, जिसमें बहुत ही सुंदर ढंग से सेवा धर्म का परिचय दिया है। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सेवा परम कठिन जग जाना, स्वामी धर्म स्वार्थी विरोध विरोधो बैरो संग प्रेम न प्रबोधो। तुलसीदास जी ने लिखा ये संत शेखदास जी द्वारा प्रदत्त मानव जीवन के 5 उत्तर नामक शीर्षक में महादेवी तीर्थ के अधिष्ठाता संत शेखदास जी ने सेवा धर्म को तृतीय स्थान दिया है। मानव जीवन का उद्देश्य प्रभु प्राप्त है और मानव जीवन का सिद्धांत सत्य है। आपको याद होगा कुछ वर्षों पूर्व मैंने मानव जीवन के 5 उत्तर लिखे थे, उसी में तीसरा है सेवा धर्म। तीसरा सूत्र कौन सा दिया था? सेवा। पहला कौन सा दिया था? द एम ऑफ लाइफ इज टू सी द गॉड, जीवन का उद्देश्य भगवान की प्राप्ति है। और दूसरा था द प्रिंसिपल ऑफ लाइफ इज टू, आप लोगों को याद होगा कि दूसरा कौन था? तो दूसरा था सत्य, द प्रिंसिपल ऑफ लाइफ इज ट्रुथ। और तीसरा है द रिलीजन ऑफ लाइफ इज सर्विस टू ह्यूमैनिटी। मानव जीवन का उद्देश्य प्रभु प्राप्ति है और मानव जीवन का सिद्धांत सत्य है। सत्य साध्य और साधन दोनों ही है। इन्होंने जीवन धर्म सेवा बताया। उनका स्वयं का जीवन सेवा में था, गैर सेवा रूपी थे। उनके दर्शनों से हमें ऐसा प्रतीत होता था मानो सेवा ही मूर्तिमान होकर मानव समाज को सेवा का सही रूप बतला रही है। सेवा सार्वजनिक तथा सार्वभौम होती है। सेवा धर्म की मांग है, आवश्यकता है। मानवीय गुणों सही क्षमता दया करना क्षमा विनम्रता सरलता की जननी सेवा ही है। धर्म की परिभाषा करते हुए हम जानते हैं कि जो धर्म किया जाए वही धर्म है। सेवा के रूप में धर्म को धारण करने से मानव अपने कुल परिवार गांव देश राष्ट्र विश्व एवं प्राणी मात्र की सेवा करने में सक्षम हो जाता है। इतना ही नहीं, वह जीव जगत की सेवा करते हुए अनुभूति करता है कि ये जगत जड़ जेतुं उसी के प्रभु का ही रूप है। श्री राम चरित मानस में प्रभु श्री रामचंद्र अपने प्रिय सेवक हनुमंत से कहते हैं, स्कंदा कांड 2:31, सो अनन्य जाके असी मति न तहि हनुमंत, मैं से सचराचर रूप स्वामी भगवंत। ये हनुमान अनन्य भक्त वही है जिसकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं भूलती कि मैं सेवक हूँ और ये चराचर जगत मेरे भगवान का रूप है। उपरोक्त भावना से की गई सेवा पूजा बन जाती है। इस सेवा का रूप निष्काम होता है। निष्काम सेवा में सेवक को किसी प्रकार के स्वार्थ का हाल नहीं करना है। यहाँ तो निष्काम सेवा में स्वार्थ रहता ही नहीं। सेवा करते हुए सेवा अपने सेवे की सेवा मन वचन और कर्म से करता है। लक्ष्मण जी का आदर्श देखिए, युद्ध कांड 136। सेवी लखनऊ कर मन बानो। एक और प्रसंग में लक्ष्मण की सेवा के विषय में बताते हुए संत तुलसीदास जी लिखते हैं, सेवे लखनऊ सोच लग भी हूँ जिन्हें अभिवेकी पुरुष शरीर हूँ। जैसे अभिवेकी पुरुष अपने शरीर की सेवा करता है, ऐसे ही लखन को लक्ष्मण जी को अपने बड़े भाई रघुवीर जी की सेवा के विषय में वो सोचते हैं। और उधर जो भी लखन ही कैसे पलक विलोचन गोलक जैसे सेवक का लौकिक प्रेम ही सेवा बन जाती है। ये श्याम सेवा ही परहित है, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा समझाई। दूसरों को भलाई करने के समान कोई दूसरा धर्म है ही नहीं। सगुण उपासक परहित, जो सगुण के उपासक होते हैं वो दूसरे का भला अवश्य करते हैं। भगवान के लिए परहित करने वाला प्यारा है, और उधर सेवक भगवत कार्य परहित करने में इतना नियत है। राम काज कीने बिनु मोहि कहां विश्राम, ये हनुमान जी ने कहा था जब उनके सामने रास्ते में रुकावटे आई थी। परहित अथवा सेवा धर्म मानव जाति के उत्थान का सोपान है, मोक्ष का द्वार है। संत सेवजा जी के जीवन में अनेकों सेवा प्रसंगों का स्मरण होते ही सेवा साकार हो उठती है। संपूर्ण जीवन सेवा में होने से कदम कदम पर पद पद में मैंने उन्हें सेवा करते हुए देखा है। केवल निद्रावस्था ही में वे क्लेशील नहीं दिखाई देते थे, उनका मन सेवा में हो गया था। वे मन से वाचा और कर्मणा से सेवा में रहते थे। अनेक प्रसंगों को लिखने से लेख लंबा हो जाएगा, इसलिए उनके सेवा के प्रसंग में ही यहाँ लिख पाऊंगी। सन 1977 में जनवरी महीने में मेरी माता जी माता श्री उनके सखी तथा जगदीशोर जी जो श्री श्री महाराज जी के साथ गंगा सागर गए थे। हम कलकत्ता में गोल पार्क में खादी कमीशन के गेस्ट हाउस में ठहरे थे। खादी कमीशन के डायरेक्टर श्री गंगोली जी ने हमारे ठहरने को उत्तम प्रबंध किया था। एक दिन हम गोल पार्क से रामकृष्ण मिशन पार्क कल्चर देखने के लिए पैदल ही निकले। कुछ दूर जाने पर मैंने देखा कि श्री श्री महाराज जी तो हमारे साथ नहीं है। उन दिनों का श्री महाराज जी ने वैसे तो जीवन पर्यंत कभी वस्त्र नहीं पहने, लेकिन फिर भी वो जब मैंने देखा तो वो सड़क के किनारे एक गंदी नाली के पास बैठे हैं। वो केवल एक मात्र चद्दर ओढ़ी है, नंगे पांव नंगे बदन से अपने बदन पर ओढ़ी मात्र गफर की चद्दर में कुछ लिए बैठे हैं। हम सब पीछे मुड़े, हमने देखा उनकी चद्दर में कुत्ते का पिल्ला था। वे उस पिल्ले को बड़े प्यार से पूछ रहे थे। मैंने कहा, स्वामी जी ये क्या? उन्होंने उत्तर दिया, मोहन जी ये पाप बोलते ना पुअर फैलो खाए बेचारा को महाराज जी पाप देते थे। गंदी नाली की ओर संकेत करती हुए कहा, यहाँ पड़ा दिख रहा था, बाबा की दृष्टि पड़ी तो इसे बाहर निकाला, इसे भूख लगी थी। जाओ जगदीश दूध और ब्रेड ले आओ। जगदीश जी गए, शीघ्र ही दूध रोटी ले आए। स्वामी ने रोटी तोड़ तोड़ कर दूध में भिगोया और फिर एक एक गिलास पिल्ले के मुंह में देना शुरू किया। लगभग 20 मिनट तक वह अजीब जरूरत की समय में इस कदर तलीन थे, उन्हें देश काल का भी भान नहीं रहा और हम भी उनका ये वात्सल्य भाव देख कर भूल ही गए कि हम कहाँ खड़े हैं और कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने कुत्ते के पिल्ले को गोद से निकाल कर सड़क पर खड़ा कर दिया और बड़े प्यार से अपना बर्द हस्त उस पर फेर कर कहा, अच्छा चले। तेजी से कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़े। शेष महाराज जी नंगे पांव ही रहते थे, तन पर एक चद्दर ही होती थी। श्रीमद भागवत गीता का श्लोक मेरे सामने खड़ा हो गया था। उत्तर मिला, हाँ क्या उत्तर मिला? हाँ सुमिन्यवादी कालस्ते माँ फलेशु कदाचन, रंग करते जाओ फल की इच्छा मत करो। नहीं कर्म तो सेवा है, परहित है और भगवान की पूजा है। इन शब्दों के साथ गीता माँ कल आगे का प्रसंग सुनाऊंगी। जय माता दी।